ओम शांति। अव्यक्त मास में हर दिन हम लोग कोई ना कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो मधुबन से आया हुआ पुरुषार्थ का बिंदु है, आज 4 तारीख जनवरी मास, तो आज का जो पुरुषार्थ बिंदु है पहले उसको पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल ना निकले। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव वाला ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। तो आज का ये पुरुषार्थ है, हर दिन का ये जो पुरुषार्थ है जो हम 1 तारीख से कर रहे हैं, हर दिन नई नई पॉइंट्स हैं, नया नया अभ्यास है। तो आज 4 तारीख का जो पुरुषार्थ जो सुबह दिया गया था वो था कि आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल ना निकले। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव वाला ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। कहाँ है बाबा कहते हैं हम लोग कौन है? रॉयल आत्माएं हैं, रूहानी रॉयल आत्माएं। तो रॉयल आत्माएं अर्थात जिनकी हर बात रॉयल हो। राजघराने होते हैं भारत में या विश्व भर में, और वो जो रॉयल फैमिलीज होती है उनके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उस अनुसार वो लोग चलते हैं। तो जैसे ही कहा जाता है कि हम रॉयल आत्माएं हैं तो इसमें बहुत सारी बातें आती है, और वो सारी बातें गुड मैनर्स की बातें हैं, वो सारी बातें अच्छे शिष्टाचार की बातें हैं। तो नए साल में और पुराने साल में हमारे जीने का जो तरीका था या अपने जो सूक्ष्म विचार थे और अभी जो विचार है, इसमें अंतर हो। तो रॉयल आत्माएं अर्थात कुछ मैनर्स, तो हम कुछ मैनर्स की चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो मैनर्स बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला तो स्पीकिंग मैनर्स, स्पीकिंग मैनर्स अर्थात बोलना। बोलने के विषय में बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। आज सुबह की साकार मुरली में एक शब्द आया है, बाप है युक्तिबाज। युक्ति से बोलना हमारे सबसे पहला है बोल। हमारा स्पीच कैसा होना चाहिए? मधुर, कम, मीठा, युक्तियुक्त, राजयुक्त। हमारे किसी शब्द से किसी आत्मा को दुख ना हो, टॉन्ट भरा, किसी को गिराने वाला, निरुत्साहित करने वाला, व्यंगबान जिसको कहते हैं, जिसे सुनकर किसी को बहुत दुख हो, ऐसे हमारे शब्द ना हो। जो भी शब्द हमारे मुख से निकले वो हमारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं। शब्दों के पीछे क्या काम करता है? हमारी भावना। हम अगर चाहे किसी के सामने हमें बहुत अच्छा बोलना है परंतु मन में हम उससे घृणा करते हैं, तो कितना भी चाहो वो घृणा का भाव कहीं ना कहीं प्रकट होगा जरूर। तो जो स्पीच है, बोल है, शब्द है, उनके पीछे भावनाएं काम करती है। अगर स्पीच को ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा? भावनाओं को ठीक करना पड़ेगा। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है उसको शायद हम अब तक भूले नहीं है, उसको 10 साल हो गए और उसके प्रति हमारी भावनाएं शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं मन में घृणा है या बदले का भाव है। तो हम बाहर से कितना भी चाहे परंतु कुछ ना कुछ ऐसा हमारे मुख से अचानक निकल जाएगा जो अशुभ है। तो बाबा ने कहा है, आज का जो पुरुषार्थ है, तुम रूहानी रॉयल आत्माएं हो, तुम्हारे बोल मधुर, तुम्हारे बोल युक्तियुक्त, तुम्हारे बोल में अव्यक्त भाव। बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा, बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा 2-3 चीजें करती है। एक तो जो सत्य है उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, या सत्य को दबा देते हैं, या सत्य को बढ़ा के बोलते हैं, अतिशयोक्ति, अंग्रेजी में कहते हैं एग्जैजरेशन, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर जो सत्य है उसको दबा देना, या फिर जो सत्य है उसका रूप परिवर्तन कर देना, अधिक बोलना। ये जो इच्छा है ये दिखाती है कि अंदर अंतर्मुखी अवस्था नहीं है। आत्मा क्यों बोलना चाहती है बहुत ज्यादा? क्योंकि शायद अंदर बहुत खालीपन है, इसलिए वृत्तियां बाहर जा रही है। यहां अगर भरा है अंदर, तो जैसे ही सेवा अर्थ बोलना वो अलग चीज है, पर जब सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी समय बर्बाद कर रहे हैं लंबी लंबी बातों में, यहां वहां की बातों में, व्यर्थ की बातों में, गॉसिप्स में, झरमोई झगमोई में, फोन पर लंबा लंबा बात कर रहे हैं, वो सारा धीरे धीरे हमें गिराता है, क्योंकि उसमें अपने आप पर चिंतन आ जाता है, उसमें अपने आप हम सत्य के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। सत्य को दबाना, सत्य के साथ छेड़छाड़ करना, परिवर्तित करना, या सत्य को बहुत अतिशयोक्ति करना उसके, तो ऐसी 2-3 चीजें हो जाती है। इसलिए हमारे बोल के पीछे जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं, बोल के ऊपर काम नहीं करना होता है, भावनाओं पर काम करना है। ऐसी कुछ आत्माएं होगी कि जिनके लिए हमारे मन में सम्मान कम है, जिन्होंने हमारे साथ शायद गलत व्यवहार किया था, ऐसी आत्माओं को आंखों के सामने लाना है, रोज देखना है उनको, और उनके प्रति शुभ भावनाएं उत्पन्न करनी है। क्योंकि ऐसी आत्माएं अगर अचानक सामने आ गई तो कुछ ना कुछ हमारे मुख से निकल ही जाएगा उसके प्रति। वो इंचार्ज, हेड, हमारे सीनियर हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, या जूनियर हो सकते हैं, तीनों में से कोई ना कोई होगा। और वो जैसे ही सामने आएगी वो आत्मा, फिर उसके प्रति वैसे ही शब्द अचानक निकलेंगे जोर से, और वो बोलने के बाद हमें ही दुख होगा। तो सबसे पहली चीज जो सीखनी है या जो करनी है वो है बोल, स्पीच, इस पर काम करना है। कम, धीरे, ये सब हमको पता है, परंतु वाणी का जो संयम है या वाणी का जो तप है वो है मौन। वाणी का मौन क्या, वाणी का तप क्या है? मौन व्रत। और मौन अर्थात केवल चुप रहना भी नहीं, मौन सूक्ष्म आत्मचिंतन की अवस्था है। हो सकता है कोई बहुत बोल रहा है पर फिर भी अंदर से मौन है, और हो सकता है कोई चुप है फिर भी अंदर भीड़ है, दोनों ही हो सकता है। इसलिए मौन अर्थात केवल न बोलना, ये मौन नहीं है। जब लक्ष्य मौन का रखा जाए तो अपने आप वाणी कम होगी, पर अगर कम बोलने का लक्ष्य रखेंगे तो अपने आप ज्यादा बोलना होता है। इसके लिए टारगेट, लक्ष्य बहुत ऊंचा हो कि जितना हो सके आज सारा दिन मौन। और मौन एक ऐसी तपस्या है कि केवल जो मौन रखता है वही मौन की शक्ति को जान सकता है। एक दिन पूरा दिन सारी सेवाएं, अगर बोलने का उसमें ज्यादा काम नहीं है, हम मौन में करके देखें। एक वो सेवा है जिसमें हम बहुत बोल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, दूसरी वही सेवा बोल रहे हैं, सेवा तो कर रहे पर बोल नहीं रहे। हमें पता चलेगा कि इसमें ऊर्जा बहुत बचती है और इसमें ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। सबसे पहला बोल, कैसे कम हो, मीठे हो, युक्ति युक्त हो, सोच समझ के हो, त्रिकालदर्शी स्थिति में हो, किसी को दुखदायी दुख देने वाले ना हो, उत्साहवर्धक हो, वरदानी हो, स्वमान वाले हो, ये सारी बातें उसमें आनी चाहिए। क्योंकि हमारा एक छोटा सा बोल आज सुबह का वरदान है ना, मीठा बोल और दृष्टि किसी को उठा सकता है। कोई एकदम गिर गया है पुरुषार्थ के मार्ग में, एकदम नीचे गिर गया है, एक किसी के थोड़े से बोल, थोड़े से शब्द उस आत्मा को उठा देते हैं, उसमें शक्ति भर देते हैं। कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी है पर पुरुषार्थ करते करते थक गया और अचानक उसने कहीं पर सुन लिया कि अपने अंदर के तपस्वी को जगाओ। जैसे ही ये शब्द सुने अचानक वो जागृति आ गई कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। तो किसी के एक छोटे से शब्द भी आत्मा को जगा सकते हैं, शक्ति भर सकते हैं। तो हमारे बोल दूसरों में शक्ति भरे, आत्मिक शक्ति, संकल्प का बल भर दे, पावर भर दे। जो अब तक कर रही थी आत्मा, अचानक उसे आभास हो जाए कि ये मुझे नहीं करना है, ये मैं करने नहीं आया हूं, मुझे कुछ और करना है। जैसे दिखाया है तुलसीदास अपने पत्नी में इतना मोहित है, जब वो मायके चली जाती है तो कैसे कैसे वो मुर्दा होता है, उस पर बैठकर पानी की तेज धार पार कर वो पहुंचता है, वो सांप टंगा होता है रस्सी समझकर चढ़ जाता है, इतना पत्नी से मोह। और उसकी पत्नी जो एक शब्द उसको बोल देती है कि जितना प्यार तुमको इस शरीर से है उतना ही प्यार अगर राम से हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अचानक वो देखता है उसकी पत्नी का वो शरीर हड्डी मांस का पिंजर उसे दिखाई दे रहा है और वो शब्द ऐसे अंदर घुस जाते हैं कि बस वापस वो लौट के नहीं आता है। फिर ये मैं क्या कर रहा हूं, किस शरीर से मैं इतना प्यार कर रहा हूं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। अचानक जागृति आती है। तो हमारे शब्द क्या करे, आत्माओं में जागृति लाए। और जगा केवल वही सकते हैं दूसरों को जो स्वयं जगे हुए हैं। तो नए साल में खुद को जगा के रखना है। जो गलतियां हमने की है 2019 में, वो गलतियां 2020 में ना हो। 2019 में जो काम हमने, एक का अंतर है, जो काम हमने बाबा के बगैर किए अब बाबा के साथ करने, वन एक का पाठ। जो जो कार्य बाबा के बिना होते हैं, संडे की मुरली में था लास्ट, जहां बाप नहीं वहां पाप, वहां अपने आप पाप होते रहेगा और जहां बाप है वहां अपने आप पुण्य होते रहेगा। तो हर छोटा से छोटा कार्य बाप के साथ करना, बाप की याद में करना, तो अपने आप पुण्य होंगे। तो हमारे अंदर निरंतर एक जागरण की अवस्था हो। समय कौन सा चल रहा है, मुझे पुरुषार्थ क्या करना है, मुझे सोना नहीं है, सोना अर्थात बेहोशी, बेहोश नहीं हो जाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है उसको पक्का पकड़ के रखना है, वो छोड़ी कि गिरे, एक दिन अमृत वेला मिस, दो दिन अमृत वेला मिस, फिर धीरे धीरे स्थिति अपने आप नीचे चली जाती है। एक दिन टाइम वेस्ट किया, दूसरे दिन टाइम वेस्ट किया, अपने आप नीचे चले जाते हैं। इसलिए बात कर रहे थे हमारे बोल की, हमारी वाणी की, हमारी वाचा की। हमारी वाचा में पावर हो, शक्ति हो। बाबा ने अभी अभी जो अव्यक्त वाणी चली उसमें कहा है कि तुमको नए साल में तीन गिफ्ट देने हैं सबको। कौन से? दुनिया में भी गिफ्ट देते, तुम्हें भी तीन गिफ्ट सबको देने हैं। कौन से? मन, वाचा, कर्म। मन से शक्तियां, वाणी से ज्ञान और कर्म से गुण। ये हमेशा आता है, पर इस बार जो मुरली चली थी नीचे शांति वन में, उसमें बाबा ने कहा है। तो हमारी वाणी से ज्ञान छलकता रहे निरंतर, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की लेन देन आपस में होती रहे। अपने आप वाणी, वाणी भी एक तपस्या है। वाणी क्या है? एक तपस्या है, वाचा की तपस्या है। वो शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति 10 साल तक, एक जगह लिखा है, सत्य बोलता है, फिर उसके बाद वो जो कुछ बोलेगा वो सब कुछ होने लगेगा। वो वाणी का संयम है, वाणी की तपस्या है। कभी भी झूठ उसमें ना निकले, कभी भी उसमें बहानेबाजी ना हो, कभी भी उसमें अपने आप को छिपाना ना हो। क्योंकि छिपाएंगे कैसे? छिपाते हैं जिद और सिद्ध करके छिपाते हैं। छिपाएंगे तो बात और बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी। तो वाणी में बहुत सारी बातें आती है, और सबसे श्रेष्ठतम उपाय है वाणी को शक्तिशाली बनाने का, चुप रहना। जैसे हमारे पास 4 घंटा है, उस 4 घंटे में हम अकेले एकांत में बैठ के मुरली का चिंतन करना, अभ्यास करना, योग का कोई प्रयोग करना, या फिर अपने ही जीवन को देखना। जब से मैं ब्राह्मण बना हूं और आज तक ग्राफ कैसे रहा पुरुषार्थ का? ऊपर नीचे रहा या एक रस रहा? अपना ही चिंतन करना, यही मौन है। स्वचिंतन, मौन अर्थात स्वचिंतन, खुद ही अपने आप को देखना क्या क्या हो रहा है अंदर। आज सुबह की साकार मुरली थी, प्राणी किसको देख? अपने ही मुख को देख। हे आत्मा, कितने पाप कितने पुण्य? बाबा ने कहा है पुण्य तुम्हारे बहुत कम है, पाप बहुत ज्यादा है। याद कितना किया? याद कम तो पाप कटेंगे नहीं, तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है। याद ज्यादा करेंगे तो ही पाप कटेंगे। तो ये स्वयं के चिंतन की बातें हैं। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है मौन। जब तक कोई दूसरा बात ना करे, बात ही ना करना। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करना, और बात करने में सब कुछ आता है, मैसेज करना, फोन पर बात करना, ये सब भी सांकेतिक भाषा में बोलना, ये सब भी मौन भंग है। चुप रहना, पहले स्थूल और फिर धीरे धीरे मन का मौन। तो ये है सबसे पहला गुड मैनर्स। तुम हो रूहानी रॉयल आत्माएं जो बहुत बोलते हैं, चाहे कितना भी अच्छा बोलते हैं। मुरलियों में आया है लोग कहेंगे ये बोलते बहुत अच्छे है, परंतु बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर इसका असर कुछ नहीं होगा फिर। तो सबसे पहला ये मैनर्स है, कम बोलना, मीठा बोलना, जरूरत हो वहां बोलना, और जितना हो सके न बोलना। महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैं लंदन में था मुझे बहुत डर लगता था बोलने से, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। एक एक वाक्य बोलने के लिए वो मन में पहले वाक्य तैयार करना पड़ता था और फिर ही मैं बोल पाता था। पर उन्होंने लिखा ये मौन मेरे लिए ढाल का काम करती थी। नहीं तो मैंने देखा है, उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है ज्यादा बोलूं, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू मॉडिफाई or suppress the truth is natural propensity of man and silence is necessary to surmount it. उन्होंने लिखा कि ये तीन मनुष्य की कमजोरी है, सत्य को दबाना, सत्य को मॉडिफाई करना, परिवर्तित करना, और तीसरा उसको उछालना, अतिशयोक्ति करना. और इन तीनों को हटाने के लिए मौन बहुत अच्छा है, चुप ही रहना, नहीं तो हम कुछ ना कुछ करते हैं सत्य के साथ. जितना हम बोल रहे हैं वो संपूर्ण सत्य नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है. इसलिए मौन एक तपस्या है. तो ये पहला गुड मैनर्स स्पीच. दूसरा ड्रेस. दूसरा गुड मैनर्स में क्या आता है? रॉयल आत्माओं के ड्रेस कैसे होते हैं? रॉयल होने चाहिए. हमें देखकर किसी के भी मन में विकारी भावनाएं उत्पन्न ना हो हमारे कपड़ों को देखकर. इसलिए हमारे कपड़े योगियों जैसे होने चाहिए, तपस्वियों जैसे होने चाहिए. और वो इसमें तो लगभग पूर्ण मार्क अंक मिलेंगे सभी ब्राह्मणों को, क्योंकि सभी ब्राह्मण इसको फॉलो तो करते हैं. परंतु मधुबन में रहते तो ठीक रहते, यहां से जब जाते हैं बाहर तब बहुत सारा चेंज हो जाता है. तो इसके तरफ भी ध्यान रखना है कि हमारे ड्रेस स्वच्छ हो, शरीर को अच्छे से ढके हुए हो, फटे हुए ना हो, शालीन हो, उसमें रॉयल्टी हो. ये सारी चीजें ड्रेस के बारे में. तीसरा है भोजन. भोजन करते समय मैनर्स. कौन कौन से मैनर्स है भोजन करते समय? सबसे पहला तो आवाज नहीं करना है भोजन करते समय. वो प्लेट की आवाज, चम्मच की आवाज. दूसरा, भोजन करते समय कपड़ों पर नहीं गिराना है. तीसरा, भोजन जितना हो सके मौन में किया जाए. अगला, भोजन करते समय दृष्टि देकर भोजन करना है उसको, जैसे हम भोग लगा रहे हैं उसको. क्योंकि जो खुद बनाते हैं उनके लिए अलग बात है, जो नहीं बना रहे उनके लिए एटलीस्ट हम अच्छे से उसको दृष्टि दें. भोजन करना एक तपस्या का कार्य हो और मन में कोई कंप्लेंट ना हो. भोजन तीन शब्द है उसमें. भो अर्थात भोग लगाया हुआ, ज अर्थात जिसमें जाति दोष ना हो, जाति दोष अर्थात कंकड़ पत्थर ना हो, जाति दोष अर्थात वो किस ढंग से कमाया हुआ है, किसी का शोषण करके, किसी को एक्सप्लॉइट करके, दो नंबर का इस तरह के पैसे वाला ना हो वो. जाति दोष अर्थात वो किस प्रवृत्ति का भोजन है, राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है, किस तरह का वो भोजन है, वो भी उसमें आएगा. वो अत्यंत तीखा है, तला बहुत ज्यादा गरिष्ट है, वो सब राजसिक में आता है. जितना हो सके योगी का भोजन बहुत ज्यादा सात्विक हो, शुद्ध हो. तो वो एक बात. उसके बाद में टेबल मैनर्स में जितना हो सके एक ही बार में ले लेना है. बार 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 जाते रहते लेने के लिए, गरम गरम हो या कुछ भी हो, वो भी मैनर्स में नहीं आता है. या फिर किसी और की थाली में देखते रहना और उधर क्या ज्यादा है और इधर क्यों कम है और उधर ऐसा है इधर ऐसा है कि वो कहां से लाया ये कहां से लाया. जितना हो सके एक ही बार ले लेना. जगदीश भाई जी थे, एक ही बार ले लेते थे बस, ताकि वापस कुछ और लेने की जरूरत ना पड़े और वो कम हो और दृष्टि देकर लिया हो. और जितना हो सके मौन में खाना है. ये एक ऐसी धारणा है कि जिसको बहुत कम ब्राह्मण करते हैं. भोजन के समय टेबल टॉक्स, यहां वहां की बातें चलती है. और एक, भोजन करते समय सामने मोबाइल, वीडियो, टीवी, सीरियल, अखबार ये सब कुछ ना हो एज फार एज पॉसिबल, ना मतलब ना उसको अलग ही रख दो। कोई लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, टीवी भी चालू है, खाना भी चालू है, मोबाइल पर भी चालू है, ये भी चालू है। भोजन जैसे अमृत वेला तपस्या का समय है, भोजन भी तपस्या का समय है। हाँ, उसके बाद में मधुबन में एक बात जो देखी गई है कि इतना सारा चाय ले लेते रख देते आधा, वेस्ट पानी, वेस्ट भोजन, जो चीज हमको पता है ये नहीं है और हमने कभी खाई नहीं है फिर भी ले लेते आधी छोड़ देते हैं, वेस्ट। भोजन करते समय ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व है इसका चिंतन करते करते खाना है कि कितना महत्वपूर्ण है, अपने भाग्य के गुण गाते गाते करना है, तो वो भोजन शक्ति भरेगा अंदर। याद में खाया हुआ भोजन आत्मा में बल भरता है। दूसरा, भोजन खाने के बाद जो टेबल कुर्सी है, कई लोग उसको पीछे करते और चले जाते हैं, उसको वापस लगाना है जैसे वो पहले थी। उसके बाद में थाली के इर्द गिर्द पूरा गिरा देते हैं, वो भी नहीं गिराना है। उसके बाद में जो ग्लास है वो नीचे, क्या कहते हैं उसको, कोस्टर, इंग्लिश में कोस्टर कहते हैं, कोस्टर वो जो रहता है ना रखने का, उसके ऊपर ग्लास रखना है, नहीं तो पानी का गोल वहां बन जाता है या चाय का, यहां ग्लास। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो दूसरा आके पहुंचे बाद में, तो वो जो लोग घर पे रहते हैं, आबू निवासी तो सारे घर रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, रोस्टर ही कहते हैं, कोस्टर, कोस्टर कहते हैं उसको, वो कोस्टर लेके रखने हैं बहुत सारे, ताकि कुछ भी चाय, कॉफी, जूस, पानी उस कोस्टर के ऊपर रखना है, नहीं तो वहां पे दाग आ जाता है एक, वो भी एक गुड मैनर्स में आता है। और ऐसा कहा जाता है, हम लोग तो नहीं जाते बाहर, पर गुड मैनर्स में, टेबल मैनर्स में एक ये भी चीज आती है, जो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए पॉइंट नहीं है पर याद रखने जैसी है, कि जो वेटर होते हैं वहां पर उनको कभी भी बुलाना नहीं होता है, वो वहां से पास हो रहे हो तो उनको बताना होता है। ये गुड मैनर्स में नहीं आता है कि इधर आओ, वो अगर जा रहा है तो इशारे से उसको कहना होता है कि ये दो या वो दो। ये एक बाहर के लोगों के लिए भी ये गुड मैनर्स में आता है। तो टेबल मैनर्स में ये सारी चीजें आती है। तो रॉयल आत्माएं अर्थात जो भोजन को वेस्ट ना करे, भोजन को नीचे ना गिराए। और एक चीज, भोजन की थाली को फेंकना नहीं है, रखना है। चम्मच को क्या करते हैं, थाली को फेंकते हैं, तो कोई भी चीज को फेंकना नहीं है। और आवाज कम से कम हो, यहां तक कि भोजन बनाते समय भी आवाज कम हो। जिनके घरों में बर्तनों के ज्यादा आवाज होते हैं वहां झगड़े ज्यादा होते हैं। बर्तनों के ज्यादा आवाज होते हैं वहां झगड़े भी ज्यादा होते हैं। हाँ, तो जितना हो सके, ये तो खाने की बात थी, टेबल मैनर्स। फिर दूसरा है किचन मैनर्स। रॉयल आत्माओं का किचन कैसा होना चाहिए? ये राम का किचन है, रावण का किचन नहीं। राम का किचन अलग, रावण का किचन अलग। राम के किचन में हर चीज सही जगह पर रखी हुई हो, नहीं तो ढूंढना ना पड़े, ये कहां था वो कहां था ढूंढते रह रहे। हर चीज सही जगह रखी हो और हर चीज के ऊपर लेबल हो, इसके अंदर क्या है, वो है गुड मैनर्स। बर्तन साफ सुथरे हो। रात में बहुत सारे बर्तन झूठे छोड़ के सोना, ये भी गुड मैनर्स में नहीं आता है। जो लोग घर पे रहते, छोटा परिवार है, वो साफ सुथरा करके ही सोए तो बहुत अच्छा। उसके बाद में गैस वो जो उसकी फ्लेम होती है कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लेम में पकाना बनाना क्रोध की निशानी है, वो भी गुड मैनर्स में नहीं आता है। और जो भी बनाया जाए वो याद में बनाया जाए, वो गुड मैनर्स है। किचन का वायुमंडल में भोजन बना रहे हो और उधर टीवी भी चालू है जोर से, उधर न्यूज चालू है, वो भी ना हो। अगर कुछ करना है तो कई लोगों का बहुत अच्छा अभ्यास है, कोई क्लास चालू कर देते हैं, कोई कमेंट्री चालू कर देते हैं, योग का सॉफ्ट म्यूजिक चालू कर देते हैं, उसमें बाबा की याद में बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा अभ्यास है याद में बनाना। और जितना हो सके मौन में बनाना, ये भी एक अभ्यास है। और एक बात, भोजन बनाते बनाते खाना नहीं है, खाते रहते हैं, इधर मुंह चालू रहता है, भोजन बना रहे हैं और मुंह भी कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहते बीच बीच में टेस्ट चालू होता है, भजे कुछ भी बना रहे, पकोड़े बन रहे, इधर भी चालू है, इधर बना भी रहे, इधर पकोड़े भी चालू। टेस्ट करना अलग चीज है कि कैसा बना है, वो नहीं, इधर खाना चालू है कंटिन्यूअस, तो वो गुड मैनर्स में कहां आया। भोजन अगर अंदर बन रहा है, बाहर वाले लोगों को पता भी ना चले कि अंदर भोजन बनाया जा रहा है, इतना मौन में, इतना शांति से, इतना आवाज कम करते हुए। कई बार हमने देखा है भट्टियों में बड़ा भोजन इसमें बनता है, इधर भट्टी चालू है और इधर माता है भोजन बना रही है, इतना आवाज सारा आवाज इधर आ रहा है, तो ये भी तो गुड मैनर्स में नहीं आया। तो टेबल मैनर्स, किचन मैनर्स, रॉयल आत्माएं अर्थात दोनों में साइलेंस। उसके बाद है वॉशरूम मैनर्स, टॉयलेट मैनर्स, बाथरूम मैनर्स, उसमें क्या क्या है। कोई लोग क्या करते, गीत सुनते सुनते, अच्छा क्लास भी सुनते हैं। वॉशरूम मैनर्स में जो वॉशरूम हो नीट एंड क्लीन हो, पहली बात, उसमें गंदगी ना हो, जो हमारे घर का वॉशरूम है, जो चीजें वहां रखी हुई है, बहुत सारी चीजें, सोप रखी हुई है, वॉशिंग वो कुछ कुछ बहुत सारी चीजें है जितनी है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सारा कुछ है, वो सब कुछ सही जगह पर रखा हो, स्वच्छ हो, और बीच बीच में उसकी धुलाई होती रहनी चाहिए। वहां जो खिड़की है, वो जो एग्जॉस्ट है, जो ट्यूबलाइट है, सब कुछ, वो जो कोने हैं वहां के, वहां पे जाली ना हो, स्वच्छ हो। और नहाने के बाद सब कुछ करने के बाद ऐसा ना हो कि वो बाल ही बाल तैर रहे वो बेसिन में, या भाइयों के लिए शेविंग करते हो तो पूरा वो बेसिन में उसके छींटे, या वो आईने में उसके छींटे, तो स्वच्छ हो। वॉशरूम मैनर्स, बकेट्स ठीक से रखी हुई हो, जो मग है वो भी ठीक से रखा हुआ, पानी कम से कम वेस्ट, बहुत ज्यादा पानी वहां वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पानी की बचत वहां करनी है, तो उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। तो वो है वॉशरूम मैनर्स। उसके बाद में है थैंक यू एंड प्लीज, ये दो शब्द मैजिकल वर्ड्स कहा जाता है इनको, थैंक यू और प्लीज। जैसे छोटे बच्चों की कहानी दिखाते, एक छोटा बच्चा जा रहा है जंगल से, उसे एक झाड़ दिखता है, झाड़ में लिखा है दिस इज मैजिक ट्री, कहता है मैजिक ट्री, तो कहता है कि क्या मैजिक हो सकता है इस झाड़ में, देखता है इधर से उधर से देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर वो कहता है प्लीज ट्री, टेल मी व्हाट इज द मैजिक, क्या मैजिक है मुझे बताओ. अपने वो झाड़ खुलता है उसके एक अंदर गेट और वो अंदर जाता है जैसे ही प्लीज बोलता है. और अंदर जाके वो कहता है यहां क्या अंधेरा अंधेरा है, तो वो कहता है थैंक यू ट्री. तो अचानक लाइट आ जाता है और वहां बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह इसको मिलते हैं. तो जैसे पहले प्लीज बोला फिर थैंक यू बोला, तो ये दो शब्द जो है ना वो झाड़ कहता है बस यही तो मैजिक है, थैंक यू कहना और प्लीज कहना, ये बहुत जादू के शब्द है दोनों. हम किसी को कई बार थैंक यू नहीं कहते, वो उसने हमारे इतना कुछ कर दिया, बस कर दिया टेकन फॉर ग्रांटेड चल दिए. और उसमें भी उन लोगों को जो हमसे पोस्ट में थोड़े नीचे है, जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ, झाड़ू लगाने वाले, पोछा करने वाले, ये सारे जो होते हैं ना सिक्योरिटी वाले. जैसे एक बर्फ की फैक्ट्री थी, बर्फ की फैक्ट्री जिसमें कम से कम 50 लोग काम करते थे. तो एक बार वहां का एक कर्मचारी, एक बहुत ठंडा सेल अंदर एक कमरा होता है कोल्ड रूम जिसमें टेम्परेचर 40 से भी कम होता है, तो वहां कुछ खराबी हो जाती है तो देखने जाता है वो. और जैसे ही देखने जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है और तब तक 5 बज चुके होते हैं और बाकी सब लोग चले गए और वो दरवाजा लॉक हो गया. अब वो टेम्परेचर वहां पे -40 डिग्री का टेम्परेचर उस कोल्ड रूम में. वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है, अब तो मैं गया, बचने का कोई चांस ही नहीं, सुबह होते होते तो मर ही जाना है. और 5 बज चुके, जितने एम्प्लॉय थे कर्मचारी सब चले गए, तो अकेला बेचारा बैठा रहता है, अब क्या होगा अब क्या होगा. भगवान को याद करता है और थोड़ी देर के बाद वो सिक्योरिटी वाला आता है, दरवाजा खोलता है. वो कहता है तुमको कैसे पता कि मैं अंदर हूं? तो वो कहता है कि 50 लोगों में से आप ही एक हो जो सुबह मुझे गुड मॉर्निंग करते हो और शाम को जाते समय थैंक यू कहते हो, गुड इवनिंग कहते हो. सुबह तो मैंने आपको देखा था पर शाम को कोई भी नहीं, आपको देखा नहीं मैंने, इसलिए मुझे याद रहा कि शायद कुछ गड़बड़ है. शाम को गुड इवनिंग किया नहीं, थैंक यू नहीं किया, इसलिए मैं देखने आया क्या था. और वो उसको बाहर लेता है. तो ये जो सारे कर्मचारी है, घर में जो काम करती है, कोई बाई आती है, कोई माई आती है, वो लोग हैं. भले उनका वो पद कम है परंतु आत्मा को तो सम्मान चाहिए, हर आत्मा को चाहिए. छोटे बच्चे को भी सम्मान चाहिए, खाली प्यार से नहीं होता है, उसको भी मान चाहिए रहता है. हर व्यक्ति को मान चाहिए और हर व्यक्ति को मान के साथ एप्रिसिएशन चाहिए कि तुमने ये जो किया ना बहुत बढ़िया किया, तो दूसरे दिन और अच्छा करेगा. वो आज जो बर्तन धुलाई किए ना बहुत ही अच्छे धुलाई किए, कल तो और ज्यादा चमकाएगी फिर वो. तो प्लीज और थैंक यू ये मैनर्स में आता है. इन दो शब्दों का प्रयोग जहां हो सके जितना हो सके करते रहना है. उसके बाद में है ट्रैवल मैनर्स. ट्रैवल मैनर्स में क्या है, हमको विंडो चाहिए, हमको विंडो चाहिए. ये जिद पे नहीं बैठना है, हम बीच की वाली सीट में नहीं बैठेंगे. 3 लोग हैं पीछे कार में, बीच में हम नहीं बैठेंगे. तो हम तो या तो इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे, या तो लिफ्ट मैनर्स. वो एक बहुत अच्छा वीडियो किसी ने भेजा था, लिफ्ट में एक यंग मैन ईयरफोन लगाए हुए भाग के जाता है. बस अभी लिफ्ट बंद ही होने वाली है, उसमें कम से कम 10 लोग 15 लोग ऑलरेडी है. वो एकदम भाग के आता है अपना स्कूल बैग लेके और अपना कुछ पॉप म्यूजिक सुनते हुए अंदर जाता है और अपना डांस जैसे कर रहा है. और जैसे ही वो प्रवेश करता है लिफ्ट लिखाती है ओवरलोडेड, किसी एक को बाहर निकलना है. पर वो भी क्यों कहते, वो ऐसे करता है, वो तो दिखाता नहीं मैं क्यों उतरू. दूसरे देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हम क्यों उतरे, हम क्यों उतरे. सब लोग सोचते हैं उधर कंटिन्यूअस लिफ्ट में दिखा रहा है ओवरलोडेड ओवरलोडेड, कोई तो एक बाहर निकलो, पर कोई भी निकलने को तैयार नहीं है. फिर उसके बाद में एक कन्या होती है, एक लड़की वो निकलती है बाहर, और जैसे बाहर निकलती है देखती है वो क्लचेस पर है बैसाखी, और वो बाहर निकली, लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, सब लोग उसे देख रहे, वीडियो पूरा हुआ, इतना ही वीडियो है। दिस इज गुड मैनर्स। हाँ, पर वो अपाइज है, पैरालाइज्ड है, फिर भी कर रही है, और बाकी सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वो सोचता है तू निकल, मैं क्यों निकलूं? हमको भी जल्दी है, हमको भी जल्दी जाना है। ट्रेवल मैनर्स। उसके बाद में मैनर्स में तीन लोग बैठे हुए हैं, युवक, उधर से कोई बूढ़ा आता है, उठते नहीं है जल्दी, जगह देते नहीं है। वो भी मैनर्स है कि बड़ों को जगह देते हैं। या फिर उधर डायमंड हॉल में भी ये सीन रहता है, बैठने नहीं, उठने नहीं, उठते नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ते। कोई बुजुर्ग खड़ा रहता है पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो जो भी बड़े हैं, सीनियर्स है, या बीमार है, या प्रेग्नेंट लेडी, या किसके साथ बच्चे बच्चे हैं। हमको याद है एक हंसी की बात, बहुत पहले जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, एसटी बस से जा रहे थे, तो दो लेडीज बैठी थी, हम भी बैठे, और फिर एक तीसरी आ गई और उसके पास बच्चा था, वो भी बैठ गई, उसने बच्चा यहां रख दिया हमारी गोद में। हमने कहा ये तो कंडक्टर बोलता है रखो रखो अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तुमको। ट्रैवल मैनर्स, लिफ्ट मैनर्स। तो सीट को छोड़ देना, कई बार यहां से नीचे जाते हैं, कई लोगों को उल्टी होती है जाते समय, पीछे अगर बैठे आमने सामने सीधा, पर कई लोग मानते नहीं है, कहते हम लोग सामने बैठेंगे, होनी है तो होने दो, तो अपनी सीट छोड़ देना। ये है ट्रैवल मैनर्स। उसके बाद में डोर मैनर्स होते हैं, जैसे ये दरवाजा है, हमारे पीछे कोई है, हम आगे गए, खोला और छोड़ दिया वो सीधा उसके मुंह पर। ओपन द डोर फॉर समवन, मतलब हम उसको पकड़ के रखे, फिर वो पीछे से आए, तो वो भी गुड मैनर्स में आता है। उसके बाद में है गेस्ट मैनर्स। किसी के घर में हम जब मेहमान बनकर जाते तब के मैनर्स, क्या मैनर्स है तब के? हम चार दिन के लिए गए किसी के पास, या मधुबन में आए चार दिन, तो क्या मैनर्स होने चाहिए? नहीं नहीं गेस्ट क्या क्या मैनर्स? दो मैनर्स है इसमें, एक होते हैं होस्ट के, एक है गेस्ट के। स्थूल में, स्थूल जो कमरा है उसके साथ क्या करना है, उसमें गंदगी नहीं करनी है, जैसा कमरा लिया था छोड़ते समय भी वो वैसा ही हो, ठीक है? वहां जो डस्टबिन है उसका उपयोग करना है प्रॉपर, वहां कुछ तोड़फोड़ ना हो हमारे वजह से, और ये समझना है कि हम बस यहां थोड़े समय के लिए इसको अच्छे से रखेंगे, पूरा इधर उधर चीजें बिखेर के नहीं रख देनी है, जूते उधर, कपड़े उधर, जाते समय उसको वैसा ही छोड़ना है जैसा लिया था। और शांतिवन में तो ऐसा होता है कि माताएं चाबी लगाकर चली जाती है, लॉक लगा देती है उसमें, फिर तोड़ना पड़ता है, हर टर्न में लॉक तोड़ने पड़ते, चाबी लगा के चली जाती है। तो और गेस्ट मैनर्स में शोरगुल नहीं करना है, हमारी वजह से बाजू वाले कमरे वाले को डिस्टर्ब ना हो। और गेस्ट मैनर्स, हाँ खोया पाया, या इसके पहले हमें कोई चीज मिलती है तो वापस उसको दे देना है, और बहुत बिगाड़ देते, तो वो तो कहा ही है, कपड़े, बिस्तर, ये सब चीजें, बाथरूम से लेके सब कुछ स्वच्छ रखना है, जैसे एक बार एक व्यक्ति एक होटल में जाता है, कहता मुझे एक कमरा चाहिए। होटल वाला कहता है कमरा नहीं है, वो कहता है प्लीज मुझे कमरा दे दो। एक रात की बात है, दो रात की बात है, और मैं पूरा दिन तो बाहर ही रहूंगा, खाली रात में सोने के लिए आऊंगा। वो कहता है एक कमरा खाली है पर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उसके नीचे जो है ना एक परमानेंट हमारा गेस्ट है, और वो जो गेस्ट है बहुत झगड़ा वाला है, उसको जरा भी आवाज पसंद नहीं है। अगर तुमने ऊपर के ऊपर का जो कमरा है जरा भी आवाज की ना तो वो आ जाएगा बिल्कुल तुमसे झड़ने। वो कहता है कोई बात ही नहीं है, मैं आवाज ही नहीं करूंगा, क्योंकि सारे दिन भर मुझे रात में रहना है, बाहर रहना है, लेट आऊंगा, जल्दी निकल जाऊंगा। वो कहता है ठीक है तुम्हारे ऊपर। तो वो 11 बजे आता है रात को, सारे दिन भर काम करके, और इतना थक जाता है, जूता निकल के एकदम पटकता है। फिर पटकने के बाद एकदम उसे ख्याल आता है, अरे नीचे तो वो है झगड़ालू। तो वो अगला जूता हाथ से निकालता है और रखता है और सोता है। 10 मिनट के बाद ठक ठक ठक, तो नीचे वाला आता है, कहता है वो दूसरे जूते का क्या हुआ और झगड़ा चालू। दूसरे जूते का क्या हुआ, इसका एक दूसरा अर्थ भी है इस छोटी सी कहानी का, पर चिंतन पर दर्शन, दूसरों के पर्सनल जीवन में इंटरफियर करना यह भी गुड मैनर्स नहीं है। किसके उसके जूते का क्या हुआ, तुमको क्या करना है, तुम अपना मतलब से काम रखो। वो कहता है वो दूसरा जूता कहां हुआ, उसका आवाज क्यों नहीं आया। तो गेस्ट को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, और ऐसी बारी ना आए कि वो पूछे कि भाई अब कब जा रहे हो, पहले ही निकल जाना, इससे पहले कि दूसरे कहे कि भाई धर्मशाला समझ के रखा है क्या। आए तो बिल्कुल जम गए, कोई कोई आते हैं ना मेहमान जमने के लिए आते हैं, जाते ही नहीं बिल्कुल। तो समझ लेना है उनके व्यवहार को देखकर कि अभी ये चाहते हैं कि हम यहां से जाए, और दूसरा बिना परमिशन इनविटेशन कहीं जाना नहीं है, ये भी गुड मैनर्स में नहीं आता है, उसका भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात और एक इसी से जुड़ी हुई, होस्ट के मैनर्स। हमारे यहां कोई मेहमान आता है तो किन बातों का हमको ध्यान रखना है, उनको कोई तकलीफ ना हो, कमरा अच्छे से तैयार किया हो, नहीं तो हम किसी को बुलाए, ठंड के दिन है और पानी गर्म ही नहीं है और बेचारा परेशान होते रहे, वो हमको फोन करे मोबाइल स्विच ऑफ वो फोन करना चाहता है भाई पानी पानी चाहिए, और फोन कर रहा है और फोन ही बंद तो सारा जो मेहमान आते हैं उनका ध्यान रखना है ठीक से, जो भी आते हैं वो भी गुड मैनर्स है, उनका कमरा ठीक से सब कुछ हो वहां पे, नहीं तो हम बुलाए बुलाए और सारा कुछ वहां पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है ढंग की, देखा लाइट चालू किया तो लाइट बंद, वो कहते अभी चलो कल बुला लेंगे आज की रात देख लो, वैसी चीज ना। वो होस्ट के मैनर्स, गेस्ट के मैनर्स, तो ये मैनर्स है। उसके बाद में और कौन से मैनर्स होते, मैनर्स की तो बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। हाँ, वॉकिंग मैनर्स, टॉकिंग तो हो गया सबसे पहले, चलते चलते बात करना, चलते चलते जितना हो सके। फिर है डिजिटल मैनर्स, ये सबसे बड़ी चीज है डिजिटल मैनर्स, जितना हो सके लंबी बहुत बात ना हो, कम बात हो उसमें, जितना हो सके, और उसमें दूसरों का मोबाइल हाथ लगाना देखना ये गुड मैनर्स नहीं है। किसी का मोबाइल बज रहा है, जरूरी नहीं है कि हम उसे देखें कौन है, उसका कोई पर्सनल कॉल होगा या किसी का मैसेज आ गया, मोबाइल रखा है वो चला गया और मैसेज आया, हमने देखा क्या मैसेज है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं क्या मैसेज है, किसका कॉल है, वो आके देखेगा ना, उसमें आएगा ही मिस कॉल में, या मैसेजेस में, वो देख लेगा उसका। तो दूसरों के मैसेज पढ़ना, ईमेल पढ़ना, ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। ये सब गुड मैनर्स, डिजिटल मैनर्स में नहीं आता है। फिर उसके बाद जितना हो सके जल्दी फोन उठाना, यदि हम बिजी नहीं है तो। कई लोगों की आदत होती है जानबूझकर बहुत लेट उठाते हैं, और कई तो उठाते ही नहीं जानबूझ के, और जिसको बात नहीं करनी है वो काट देते हैं। हेलो 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 जोर जोर से बोलना, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है, और कट। तो डिजिटल मैनर्स, या फिर उसमें कीमत पूछते रहते हैं, ये कितने का लिया, कहां से लिया, इसमें क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस है, इसमें वो क्या है, इसमें वो ऐप है क्या, इसमें वो इंस्टॉल किया क्या। एक बार इसके प्राइस की डिस्कशन अगर चालू हो गई तो बहुत लंबा चलेगी, लॉन्ग डिस्कशन, इसका कोई एंड नहीं है। फिर लेटेस्ट कौन सा आ रहा है, इसमें कितना ये है, इसमें कितना कैमरा, इसमें कितना वो है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, सब चालू हो जाएगा। ये सब डिस्कशन टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, तो ये भी ना हो। तो ये सारे डिजिटल मैनर्स। और कौन से मैनर्स है, ड्राइविंग मैनर्स, ट्रैवल तो बोल दिया, उसमें ड्राइवर जो है उसको भी, सबसे अच्छा ड्राइवर कौन होता है, जो चुप रह के ट्रैवल करता है, जो बातें बिल्कुल नहीं करता है, वो ड्राइवर सबसे बेस्ट है। ऐसे ड्राइवर के साथ जाना अच्छा लगता है। और जो कुछ कुछ ड्राइवर्स होते हैं नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं, और कुछ ना कुछ अपने सजेशन देते रहते हैं। ड्राइवर वो कि जिसका फोकस जो मौन रहे और गाड़ी को छोड़े ना, नहीं तो गाड़ी रोकते हैं 10 मिनट और फिर बाद में ड्राइवर को ढूंढना पड़ता है कहां चला गया। ये ड्राइवर के भी अपने मैनर्स होने चाहिए। और यहां तो ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में ड्राइविंग की सेवा बहुत सारे भाइयों की भी है और बहनों की भी है। कुछ कुछ भाई ऐसे हैं जो मल्टीपर्पस है, सब कुछ करते हैं, साउंड भी देखते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, सेंटर की सारी सेवाएं करते हैं। बहनें कुछ कुछ ऐसी है वो जो ड्राइविंग भी करती है, सब कुछ करती है, भाषण भी करती है, सब सब करती है सेंटर का। तो वहां पर ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिनको हम लेके जा रहे हैं, और सब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ते सारे पता चाहिए ड्राइवर को। हम अभी एक जगह गए थे तो वो ड्राइवर ही रास्ता भटक गया, मार्ग था खाली 2.5 घंटे का। रात को 9 बजे हमको पहुंचना था, यहां से 6 बजे निकले, रात को 12 बजे पहुंचे, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे भट्टी चालू। तो ड्राइवर ने ऐसा भटकाया, ऐसा भटकाया, ऐसा भटकाया, कहां से कहां लेके चला गया, और भी रोका तब जब रास्ता ही बंद हो गया। फिर उसको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर उसमें दिखा रहा है हम 80-90 किलोमीटर कहीं और आ गए जंगल में। वो पूरा जंगल से निकलते निकलते और कोई रास्ते में कोई नहीं दिख रहा है, किससे पूछे, वो जीपीएस भी कुछ काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो ड्राइवर अर्थात वो हो जो थके ना, ड्राइवर अर्थात वो जो बात ना करे, ड्राइवर अर्थात उसके मैनर्स है, उसको सारे रोड पता चाहिए। अगर भटक भी जाए तो तुरंत उसको क्लिक हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़े, सारी मेथड्स उसको पता रहनी चाहिए हर बात की। तो वो ड्राइवर के भी मैनर्स। और हो गया लिसनिंग मैनर्स, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भाषण दे रहा है और उसको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस हम टोकते रहे तो ये ठीक मैनर्स नहीं है। जैसे एक बहन का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण नहीं है, थोड़ा खराब उदाहरण है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन कहीं भाषण देने गई, और भाषण देने से पहले 1 घंटे का उसका मतलब बाहर के लोगों के लिए स्पीच था कोई, उसने कहा जितने लोगों के पास मोबाइल है सब अपना मोबाइल बंद करके रखे, मेरे क्लास के टाइम पे एक भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए। उसने सबको इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसने अपना भाषण चालू किया और 10 मिनट के बाद उसी का मोबाइल जोर से बजा, वो अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गई। तो जब क्लास में बैठे हमारा मोबाइल ना बजे, सबसे पहली बात। और मधुबन में और एक बात, हरेक ने अपने अपना वो ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप इंस्टॉल करके रखा है। 7:30 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल के बाद 4-5 ट्रैफिक कंट्रोल बज चुके होते हैं। मधुबन में जब आ रहे तो वो ऐप हटा दो, अनइंस्टॉल, साइलेंट कर दो, डिसेबल कर दो उसको। या अपने आप बज रहा है ना, वो अपने घर पे बजाओ। या भट्टियों में लोग आते हैं, वो कितनी बार वो शिव की याद रहे कि 4-5 बजता है और फिर प्रॉपर शिव की याद बजता है। पहले छोटे छोटे शिव की याद बजेगी तब और फिर बड़ा शिव की याद 1-2 सेकंड में कितने सारे बज जाते। अरे जब मधुबन में है तो वो अनइंस्टॉल कर दो उसको, हटा दो उसको। यहां अपने आप बजता है ना, एक एक घंटे में बजा, एक एक घंटे का भी लगा के रखा है किसी ने। योग के समय वो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उनका अपना, बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ये कोई उसमें डालकर दूसरों को सुनाने की बात नहीं है, ये अपने लिए है। हो सकता है उससे दूसरों को डिस्टर्बेंस हो जाए। हम सोचते देखो ये बजाना सबका कितना अच्छा फायदा हो गया होगा, फायदा नहीं हुआ है उनको, डिस्टर्बेंस हुआ है तुम्हारी वजह से। वो कुछ और कर रहे थे, विश्व को सकाश दे रहे थे या कुछ और कर रहे होंगे, योग का कुछ दूसरा अभ्यास। तो पहले तो बजना नहीं चाहिए, इसका मतलब हमने ध्यान नहीं रखा है। गीत बजते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं, और कोई कोई के तो ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल, कौन से ट्रैफिक कंट्रोल, कोई भी टाइम पे 9:30 का रात का ट्रैफिक कंट्रोल 5:30 के टाइम पे बजता है। या उसने वो ट्रैफिक कंट्रोल के गीत को ही अपना कॉलर ट्यून ये बना के रखा है, उसको क्यों बनाना है, वो तो वो टाइम का ट्रैफिक कंट्रोल है। तो लिसनिंग में एक तो इंटरफियर नहीं करना है, लिसनिंग में साइलेंस में सुनना है, लिसनिंग में हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो या वाइब्रेट या साइलेंट पे हो, डिस्टर्बेंस ना हो हमारी वजह से। दूसरा, आते हैं तो ये पर्स, बैग, पॉलिथीन, आवाज, कुटिया में बाबा को खत लिखने का, बाबा को खत क्या लिख रहे, दूसरों को तो पूरा उतार ही देते ऊपर से परमधाम से। पहले गए, फिर बैठे, फिर पर्स में 2-3 बार खोलते, फिर डायरी निकालते, फिर पता चलता है पेन ही नहीं है, फिर दूसरों को पेन 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 फिर पेन, फिर लिखते हैं, उसका भी आवाज लिखने का, फिर वो फाड़ने का आवाज कागज और फिर फाड़ने के बाद उसको फोल्ड करने का आवाज, और फिर 5 मिनट के लिए बाबा के सामने खड़ा हो जाते, बेचारा पीछे वाला दृष्टि ले लेते बाबा से, अभी ये सारा लिख दिया है मैंने अपनी जीवन कहानी, और फिर वहां डालते, डालने के बाद फिर पीछे वाले परेशान दुखी। बहुत ही अच्छा अपना वृत्तांत, अपनी कहानी बाबा को पूरा सुनाते, तो वो भी ना हो जाए। या तो अपना सामान इतना ज्यादा लगते, मैन स्प्रेडिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैन स्प्रेडिंग अर्थात बैठते तो ऐसा फैला के पूरा, 2 लोगों की जगह एक ही व्यक्ति ले लेता है और अपनी बैग को एक जगह, इधर हम इधर बाजू में बैग, इधर लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इधर बैग के लिए जगह है। और उसमें भी फिर पॉलीथीन और ये सब की आवाज है, अंदर शांत वातावरण है, उसमें पॉलीथीन की आवाज, खुश 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 खुश, आवाज कम से कम हो हर चीज में, हर चीज में। तो वो भी एक मैनर्स है। तो हम सब कौन है, रॉयल आत्माएं, रूहानी रॉयल आत्माएं, रॉयल आत्माओं का हर की हर चीज रॉयल होती है। दूसरा, चलने के मैनर्स, ठप 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 ठप, सब लोग शांति से बैठे, आवाज। बैठने के मैनर, धड़ाम, वो 2 बैठे थे योग करने, हिल जाते सोफा पर। दरवाजा खोलने के मैनर्स, ठिश सब पीछे मुड़ के देखते कौन आया कौन आया कौन आया, ये कौन आया महफिल में। फोन उठाने की मैनर्स, फोन अगर बच भी गया तो वो बचता रहता है बचता रहता है बचता रहता है, फिर जाते समय भी बचता रहता है। यहां पे ऑप्शन है ना एक, इसको साइलेंट कर दो, वो बचता रहेगा, यहां से ऑप्शन साइलेंट करो और फिर जाओ और वहां बात करो, और बाहर बात करने भी थोड़ा दूर जाके बात करना है, वो गेट पर ही हेलो, और फिर वहां से सारी बातें, अंदर के जितने 10 लोग बैठे हैं सबको सुनाई आ रही है उनकी सारी बातें। और एक योग में बैठे ईयरफोन लगाया हुआ है, ईयरफोन ऐसा है कि उसकी आवाज सारे हॉल को जा रही है, वो तेलुगु में चालू है कुछ, तमिल में चालू है कुछ कमेंट्री, कोई गीत या कुछ और चालू है, क्लास चालू है, वो सब लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे। हमारी वजह से किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, दिस इज गुड मैनर्स। चुप मौन में साइलेंस में जितना हो सके सब कुछ करना है, दैट इज गुड मैनर्स। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, आज का है मुख्य पुरुषार्थ, आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसलिए मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल ना निकले, हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव वाला ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो, और कमरे में भी जब रहते हैं किसी को खिड़की बंद चाहिए तो बंद रखो, हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, संस्कार मिलाने पड़ेंगे। किसी को लाइट बंद चाहिए तो लाइट बंद रखो अपने लिए, कुछ छोटा लेके आओ फिर, अगर कुछ लिखना है या मोबाइल का लाइट या कैसे भी, या सुबह सुबह बकेट्स का आवाज करते बहुत ज्यादा वॉशरूम में, हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, चाहते हैं कि वो भी उठ जाए, अरे बेचारा रात दिन भर कितना काम कर रहा था, उसको रेस्ट भी नहीं मिला। तो हर एक की अपना अपना अमृत वेला, अपनी अपनी स्थिति है, अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना योग, जैसा हम कर रहे वैसे ही सब करें, ऐसा हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी पर भी, ठीक है। तो रूहानी रॉयल आत्मा है, रॉयल्टी को धारण करना है, गुड मैनर्स, एटिकेट्स, शिष्टाचार हमारे जीवन में हो। ओम शांति।